हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सारा को देखने के बाद युग को कृषा की याद आई। उसने तुरंत उसके रूम का कैमरा ऑन किया। कृषा को सेकंड फ्लोर पर रूम मिला था। उसका कमरा भी सारा के कमरे जितना ही अच्छा था, पर वहाँ उसके लिए कोई सामान नहीं रखा हुआ था। सारा का कमरा पहले से ही उसके हिसाब से तैयार किया हुआ था। सारा को पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ लाया गया था, जबकि कृषा का वहाँ होना सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक था। इस वजह से उस कमरे में कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं था। कमरे में आते ही कृषा सबसे पहले नहाने गई थी। वहाँ कपड़े नहीं होने की वजह से उसने एक बड़े से टॉवल में खुद को अच्छी तरह लपेट रखा था। युग ने उसे टॉवल में देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। अगर तुम्हारा दिल जीतने की मजबूरी नहीं होती तो इसे यहाँ आते ही मार देता, युग ने बिना किसी भाव के कहा। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। वहीं कृषा कमरे में बोर हो रही थी। क्या यार, कितनी बोरिंग जगह है। दिखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही पकाओ, बोलते हुए उसने अपने पेट पर हाथ लगाया, जो भूख की वजह से गुड़गुड़ कर रहा था। फिर कृषा ने अपनी नज़रें ऊपर की तो उसने एक तरफ कैमरा लगा हुआ पाया। वो कैमरे के पास गई और उसमें देखते हुए जोर से चिल्लाकर बोली, कपड़े तो नहीं दिए, कम से कम खाना तो दे देते। पिछले दो दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया। कैसे होस्ट हो तुम? गेस्ट को घर पर बुलाकर उसे भूखा रखते हो, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं दिए। उसकी बात सुनकर युग ने सिर हिलाकर कहा, तुम मेरी गेस्ट नहीं हो। जो मेरी गेस्ट है उसके पास सारी फैसिलिटी मौजूद है। अनवांटेड गेस्ट को रहने के लिए 7-स्टार होटल जैसा रूम मिल गया, वही काफी है। युग अपना कैमरा बंद करने को हुआ, तभी उसे फिर से कृषा की आवाज़ सुनाई दी। वो वापस चिल्लाकर बोली, अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और फिर कुछ सोचते हुए से आगे बोली, तो तुम्हें पाप लगेगा। युग ने अपने आईपैड को साइड में रखा और फिर टेलीकॉम उठाकर मलिक से कॉल पर कहा, वो जो दूसरी लड़की आई है उसे खाना भिजवा दो मलिक। इतनी रात को सर? मलिक ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। हाँ, भिजवा दो वरना हमें पाप लगेगा, कहकर युग ने कॉल कट कर दिया। वहीं युग ने जो भी कहा उसे सुनकर मलिक थोड़ा हैरान था। उसने खुद से कहा, ये आज सर को क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। खैर छोड़ो, उन्होंने जो कहा है वो भी तो फॉलो करना है। मलिक उसी समय किचन में गया और वहाँ किसी फीमेल हाउस हेल्पर के साथ कृषा को खाना भेजा। खाना मिलते ही कृषा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वो प्लेट के साथ अंदर आई और उसे देखने लगी। उसमें उसके लिए हॉट इंस्टेंट नूडल्स और सूप था। अरे वाह, मेरा आइडिया काम कर गया, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। कृषा चम्मच उठाकर खाने को हुई तभी उसे कुछ सूझा। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब वो मुझे देख रहा है। सोचते हुए कृषा की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कपड़े नहीं पहने थे। वो दौड़कर बाथरूम में गई और उसका हर एक हिस्सा गौर से देखने लगी। बाथरूम में कोई कैमरा नहीं लगा था, जिसे देखकर कृषा ने राहत की सांस ली। तो वहीं युग ने उसकी हरकत से समझ लिया कि वो बाथरूम में दौड़कर क्यों गई होगी। बेवकूफ लड़की, मैं बाथरूम में कैमरा क्यों लगवाऊंगा, गैंगस्टर हूँ पर ठरकी नहीं, युग ने बड़बड़ा कर कहा। हाँ जानती हूँ, बाथरूम में कोई कैमरा नहीं लगवाता होगा, पर रूम में भी कौन कैमरा लगवाता है। इसकी तो हर एक खिड़की भी इसी विला के अंदर खुलती है, कोई चाह कर भी नहीं भाग सकता, फिर कैमरा की क्या जरूरत है। कृषा ने आंखें घुमाकर कहा, फिर वो खाना खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद उसने अपने बैग से दवाई निकाल कर ली। कृषा अपने बैग को कभी भी खुद से अलग नहीं करती थी और उसमें उसकी जरूरत का लगभग सारा सामान मौजूद था। फिर उसने लाइट बंद की और बैग को अपने सीने से लगाकर सो गई। उसके सोने के बाद युग ने फिर से सारा को चेक किया, वो भी सोई हुई थी। उसने मलिक को कॉल करके सिक्योरिटी को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने को कहा और फिर खुद भी सोने चला गया। खत्म। न्यूयॉर्क सिटी में सिंघानिया विला में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। आदित्य सिंघानिया अपने कमरे में गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। वहीं उनके सामने अमृता सिर झुकाकर खड़ी थी। कुछ पता चला सारा को किसने किडनैप किया होगा? मुझे नहीं लगता इस माफिया वर्ल्ड में किसी की इतनी हिम्मत होगी जो हमसे टकराने के बारे में सोचेगा, आदित्य ने सख्त आवाज में कहा। हाँ, बाकियों में तो नहीं है, पर कोई ऐसा मौजूद है जो बदला लेने की ताक में बैठा है, आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से, अमृता ने धीमी आवाज में जवाब दिया। कौन? राणा फैमिली? आदित्य ने हल्का हंसकर कहा। नहीं, वो टांग अड़ाने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता दो बार मुंह की खाने के बाद अब उनमें हमसे टक्कर लेने की हिम्मत बची होगी। हार आपके अंदर बदले की आग को और भी भड़का देती है, अमृता बोली। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो आने दो उन्हें, हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खाकर जाएंगे। सभी पड़ावों की सिक्योरिटी इतनी टाइट करवा दो कि वहाँ कोई अनजान कदम भी रखे तो जिंदा बचकर ना जा पाए। बाकी सारा को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुझे उसकी रत्ती बाहर भी टेंशन नहीं है, ऐसे ही वो माफिया प्रिंसेस नहीं है, आदित्य सिंघानिया ने लापरवाही से कहा। माफिया वर्ल्ड में काम करते हुए वो काफी सख्त मिजाज के हो गए थे और साथ ही कौन उन्हें कितना नुकसान पहुंचा सकता था इस बात की खबर भी उन्हें बखूबी थी। अमृता कुछ पल रुकी और फिर धीमी आवाज में कहा, और कृषा, सारा पर यकीन रखो, वो खुद के साथ साथ कृषा को भी सेफ रखेगी। एक काम करो, मुझे राणा फैमिली की न्यू जनरेशन से जुड़े सभी लोगों की डिटेल्स भेजो। लास्ट टाइम हमने एक दूसरे से दूर रहने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके बाद से मुझे नहीं पता उनकी फैमिली में कौन कितना पावरफुल बनकर बाहर निकला है। वैसे भी दो देशों में अलग अलग रहते हुए कभी गलती से भी टकराने का मौका नहीं मिला, मैं भी तो देखूं कौन है जो मेरे खिलाफ सर उठाने की हिम्मत कर रहा है, आदित्य ने कहा। डेविल, अमृता ने सिर उठाकर कहा। उसके मुंह से डेविल का नाम सुनकर आदित्य की आंखें बड़ी हो गईं। क्या वो लड़का राणा फैमिली से है? आजकल हर जगह उसी का नाम सुनने को मिल रहा है। मेरे अलावा मैंने इतने सालों में किसी इंसान का इतना दबदबा नहीं देखा जितना उसके बारे में सुना है। आज तक वो मेरे रास्ते में नहीं आया तो मैंने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। क्या उसने सारा को किडनैप किया है? हो सकता है, अभी श्योर नहीं है। मैं आपको राणा फैमिली की नई जनरेशन की डिटेल्स भेजती हूँ, अमृता ने जवाब दिया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद आदित्य सोच में पड़ गए। वो खुद से बड़बड़ा कर बोले, हर्षवर्धन राणा, हमारी दोस्ती को तुमने दुश्मनी में बदला जो कि पिछली तीन जनरेशन से चली आ रही है। सोचा नहीं था तुमसे फिर आमना सामना होगा। तुम अभी भी इस दुनिया में मौजूद हो तो उम्मीद है कि अपने पोते को अच्छे से समझा लोगे कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो, वरना हर बार की तरह मुझे तुम्हारा फन कुचलना अच्छे से आता है। आदित्य के चेहरे के भाव गंभीर थे, वो अपने चेयर पर लीन हो गए और सारा के बारे में सोचने लगे। अगली सुबह सारा उठी, रात को कब उसकी आंख लगी उसे पता नहीं चला। ऊपर से सुबह सुबह चाय नहीं मिलने की वजह से उसके सिर में भयंकर दर्द था। अजीब मुसीबत है, मुझे उसके पास जाकर सारी बातें क्लियर करनी होगी। सबसे पहले तो कृषा के बारे में पूछना होगा, उसके बाद उसे समझाना होगा। आई होप वो मेरी बात समझे। सारा ने उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, तभी उसके रूम की डोरबेल बजी। मेरा उसका फेस देखने का कोई मूड नहीं है, सारा ने आंखें घुमाकर कहा। वो वहीं पर बैठी रही जबकि इतनी देर में 3 से 4 बार डोरबेल बज चुकी थी। प्लीज मैम, ओपन द डोर, बाहर से एक लड़की की आवाज आई। वो वही थी जो रात को सारा को उसके कमरे में छोड़कर गई थी।
इस बार सारा ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। सारा के दरवाज़ा खोलते ही पहले उसने गुड मॉर्निंग विश किया और फिर कहा, 2 घंटे बाद आपकी सर के साथ ब्रेकफास्ट डेट है, उसके लिए तैयार हो जाइएगा। आपके साइज के सभी तरह के कपड़े क्लोज़ेट रूम में हैं। मैं उसकी सर्वेंट नहीं हूँ जो उसके कहने पर हर चीज़ के लिए तैयार हो जाऊँगी। मैं इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखूँगी। जाकर बोल दो उसे, और हाँ, ये भी कह देना कृषा को अगर एक छोटी सी भी चोट लगी तो उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, सारा ने गुस्से में जवाब दिया। वो उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन उस लड़की ने दरवाज़ा पकड़ लिया। प्लीज मैम, ऐसा मत कीजिए, आपकी हर ना और गुस्से की सज़ा हमें मिलेगी, उस लड़की ने लाचारी के साथ कहा। उसकी बात का जवाब देने से पहले सारा ने उसकी शर्ट पर लगे नेम टैग को देखा और फिर उस पर लिखे नाम को पढ़कर कहा, सो लिसन मिस हया, आई रियली डोंट केयर कि वो तुम्हें किस बात की क्या सजा देता है। मैं बार बार इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होने वाली। उसे जाकर कह दो मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, ब्रेकफास्ट डेट कई भाड़ में। सिर में दर्द होने की वजह से सारा को और भी गुस्सा आ रहा था। उसने कमरे का दरवाजा हया के मुंह पर बंद किया और फिर किचन एरिया की तरफ गई। वहाँ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रखा हुआ था, साइड में एक कॉफी मशीन भी थी। सारा ने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी बनाई और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। वहीं सारा के इनकार के बाद हया दबे कदमों से युग के पास गई और उसने जो भी कहा उसने उसे ज्यों का त्यों बता दिया। कृषा को चोट नहीं लगनी चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। रियली? युग के चेहरे पर गुस्से के साथ ईविल स्माइल थी। लगता है तुम भूल गई हो कि इस वक्त तुम डेविल के विला में हो, ना कि अपने घर पर। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है और इस ना की सजा वही भुगतेगी जिसकी तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही परवाह कर रही हो। तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी केयर होनी चाहिए सारा सिंघानिया, ना कि किसी सर्वेंट की। लगता है तुम्हें तुम्हारी लाइफ का पहला लेसन देने का टाइम आ गया है। युग उस वक्त काफी गुस्से में था, वो उठकर वहाँ से बाहर जा रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो वही जानता था, लेकिन एक बात साफ थी, सारा को उसकी इस बदतमीजी की अच्छी खासी सजा मिलने वाली थी। 1000000000